देखते हैं आज की आयात। इससे पहले आपने पिछली आयात पे गौर फिक्र किया? आप में से कोई गया समंदर पे और जाके उंगली डबो के देखी या नहीं? मैंने आपको एक प्रैक्टिकल दिया था ये करने को कि आपने उंगली डबो के देखनी है कि कितना पानी आपकी उंगली पे लगा रह जाता है। वैसे तो आप शायद इसको इतना मामूली समझें कि ये कौन सी ऐसी बात है, हमें पता ही है कितना पानी लग जाता है, लेकिन नहीं, वो जब आप प्रैक्टिकल करते हैं ना तो उसका कोई अलग ही इफेक्ट होता है। वो घर बैठे इस तरह सोचने से नहीं आएगा। और फिर उसके बाद जब आप नजर दौड़ाएंगे समुंदर की तरफ, जिसका कोई एंड नजर नहीं आता, समंदर जो होता है ना, दरिया का एंड नजर आ जाता है, नदी नालों का एंड नजर आता है, समंदर का कुछ एंड नजर नहीं आता, हद्दे निकाह तक लगता है पानी ही है, ये कभी खत्म ही नहीं होने वाला। ऐसे ही आखरत की जिंदगी भी है। और जो नेक्स्ट रुकू शुरू हो रहा है, ये इतना अहम रुकू है इसलिए कि इस रुकू की अपनी फजीलत है। हदीस मुबारक से साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को तहज्जुद के लिए जब उठते थे, तब ये आले इमरान की ये जो आगे 190 से लेके 200 तक ये 11 आयतें बनती हैं, ये तिलावत फरमाते थे। और बुखारी में भी आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि मैं अपनी खाला मैमूना रजी अल्लाह तआला अन्हा के घर मैंने रात गुजारी, अनहुमा के घर रात गुजारी, तो वो उम्मुल मोमिनीन है। तो जब रात हो गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, थोड़ी देर तक हजरत मैमूना से बातें करते रहे, फिर सो गए। जब रात का लास्ट 1/3 बाकी रह गया तो आप उठ बैठे और आसमान की तरफ निगाह करके ये इन्ना फी खल्क़िस समावाती ये 11 आयतें आखिर तक पढ़ी, फिर खड़े हुए मिसवाक की, वुजू किया और फिर आपने अपनी तहज्जुद पढ़ी हत्ता के सुबह हो गई, फजर की अजान हो गई। तो इससे हमें थोड़ा सा पता भी चलता है कि ये आयतें, यानी उठते ही बिस्तर से ये आयतें पढ़नी चाहिए, ये सुन्नत है तहज्जुद के वक्त। तो जो तहज्जुद पढ़ने वाले हैं वो इन आयतों को याद कर लें ताकि उस वक्त ये सुन्नत भी पूरी हो जाए। और भी एक बड़ी अहम इस बारे में, इन आयात की जो शान है नजूल है, इस बारे में हमें रिवायत मिलती है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से इब्ने उमर ने पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई अजीब बात बताएं, तो वो रो पड़ी, फरमाने लगी नबी अलैहिस्सलाम के तो तमाम काम ही अजीब तरह थे, यानी आपकी वफात के बाद। तो अच्छा मैं एक वाकया सुनाती हूँ, एक दफा मेरी बारी थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ थे, सोए हुए थे, फिर मुझसे फरमाने लगे आयशा मैं अपने रब की कुछ इबादत करना चाहता हूँ, मुझे जाने दो। मैंने कहा या रसूल अल्लाह की कसम मैं आपका कुर्ब चाहती हूँ और ये भी मेरी चाहत है कि आप अल्लाह की इबादत भी करें। तो अब आप खड़े हुए और एक मश्क लेदर बैग होता है ना, उसमें से पानी लेके आपने हल्का सा वुजू किया, नमाज के लिए खड़े हो गए, फिर जो रोना शुरू किया, इतना रोए कि दाढ़ी मुबारक तर हो गई, भीग गई दाढ़ी, फिर सजदे में गए और इतना रोए कि जमीन तर हो गई, फिर करवट के बल लेट गए और रोते रहे, यहाँ तक कि हजरत बिलाल ने आके नमाज के लिए बुलाया, यानी फजर की अजान के वक्त के हो गया, और आपके आंसू जारी थे। तो आपके आंसू देख के उन्होंने पूछा ए अल्लाह के सच्चे रसूल आप क्यों रो रहे हैं, अल्लाह ने आपके अगले पिछले गुनाह माफ कर दी। आपने फरमाया बिलाल मैं क्यों ना रो, मुझ पे आज की रात ये आयतें उतरी हैं, अफसोस है उस आदमी पे जो इसको पढ़े फिर भी इनमें गौर व फिक्र ना करे। सुभान अल्लाह, कि जो इनको पढ़े और फिर भी इनमें गौर व फिक्र ना करे, अफसोस है ऐसे इंसान के ऊपर। तो ये वो आयतें हैं जो गौर व फिक्र करने वाली हैं। और आप देखें टाइमिंग भी कैसी है, टाइमिंग है जब तहज्जुद का टाइम होगा तो उस वक्त कुछ सोचे ना कि जहन बिल्कुल खाली है, आप उठे हैं, कोई शोर शराबा नहीं, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई चीज नहीं आपके इर्द गिर्द ऐसी हो रही कि जो आपको मतलब अपनी तरफ मुतवज्जे करे, उस वक्त वाकई गौर व फिक्र करना आसान होता है। और अल्लाह ताला वो भेद खोलता है इंसान के ऊपर जो दिन में नहीं इंसान उस तरह सोच सकता। तो देखते हैं आयात, इन्ना फी खल्क़ समावाति वल अर्द, बेशक इस इख्तलाफ में आसमानों के, सॉरी खल्क में, पैदाइश में आसमानों की और जमीन की, और वख्तिलाफ लैली व नहार, और इख्तलाफ में एक के बाद एक आने जाने में, रात के और दिन की, ला आया तिल्ली उलिल अलबाब, इनमें निशानियां हैं अकल वालों के लिए। अब पता चलेगा अकल वाले कितने हैं हम में, क्योंकि इनमें तो अकल वालों के लिए निशानियां। अब देखिए आयत क्या होती है, आयत निशानी, आयात उसकी जमा, एक नहीं बहुत सारी निशानियां। तो आयत क्या करती है, निशानी क्या करती है, आप जब हाईवे पे जा रहे होते हैं तो वहां पे भी आयत है ना, इसका इंग्लिश में अगर इसका वो करें ट्रांसलेशन तो साइन, तो साइंस लगे होते हैं ना, साइन क्या बता रहे होते हैं आपको, वो निशान होते हैं आपको बताते हैं साइंस कि रास्ता ये इस तरफ का है, ये इस तरफ का है, वो साइंस है ना, आपको रास्ते का पता बताते हैं। इसी तरह ये आयात, ये निशानियां किसकी निशानियां, अल्लाह की निशानियां, यानी ये अल्लाह का पता बताती हैं, ये अल्लाह की तरफ पॉइंट करती हैं। साइंस होते हैं ऐसे, एरो जा रहा होता है इधर को राइट, कभी लेफ्ट, कभी नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा होता है, तो ये निशानियां भी पॉइंट कर रही हैं, ये भी एरोज हैं, ये भी साइंस हैं, अल्लाह की तरफ को ये बता रहे होते हैं आपको उसका पता। तो हम तो निशानी समझते हैं कोई बहुत ही खूबसूरत ही चीज देखें, कोई बहुत ही अनोखी सी चीज देख लें, तो फिर हम कहते हैं ओ वाह ये क्या निशानी है, ये तो को वाकई इससे अल्लाह हमें याद आ गए, चलो अगर हम बहुत ही कोई सोचने वाले हो। लेकिन अल्लाह ताला तो कहता है ये दिन और रात के आने जाने में और आसमान और जमीन में भी तुम्हारे लिए निशानी है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इससे खाली हो कि उसमें कोई निशानी हो। क्योंकि हजरत सुलेमान रोनी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, घर से निकल के जिस चीज पर मेरी नजर पड़ती है मैं देखता हूं कि इसमें अल्लाह की एक निशानी मौजूद है, उसमें मेरे लिए एक नेमत है और मेरे लिए बायसे इबरत है, यानी हर चीज में निशानी है, कोई चीज फालतू नहीं इस कारखाना कुदरत में। जब जमीन और आसमान में निशानी है, आसमान कितना बड़ा है, इसके आज तक भेद जो है इंसान नहीं जान सका। मैंने कुछ फैक्ट्स, क्योंकि मेरा तो ये बहुत ही महबूब सब्जेक्ट है ना, तो मैंने आपके लिए कुछ इसके फैक्ट्स निकाले हैं इस कायनात के ऊपर। आसमान से मतलब क्या, ये जो कायनात है आसमान, जस्ट डजंट मीन कि ये जो ब्लू स्काई आप देख रहे हैं ये आसमान है, नहीं, आसमान मीन्स आसमान इससे है कि बुलंदी से, तो ये बुलंदी के अंदर जितना कुछ है, चाहे वो बादल हैं, सितारे हैं, सैयारे हैं, उतने ही आसमान है, पूरी हमारी कायनात जिसको कहते हैं हमारी गैलेक्सी है। एक सूरज के बारे में मैंने ये तहकीक निकाली, सिर्फ एक सूरज जिसको हम बहुत बड़ा सितारा समझते हैं और रोज देखते हैं, और वो आसमान में हम देख रहे हैं कि वो चल रहा है और हम इसको उसका मुशाहिदा करते हैं। हमारी जो जमीन है 1.3 मिलियन जमीनें जमा हो जाएं तो तब एक सूरज बनेगा, यानी 13 लाख जमीनों को आप जमा करेंगे तब सूरज बनेगा, और सूरज सोचिए कितना बड़ा है, हमारे लिए तो जमीन ही बहुत बड़ी लगती है, 13 लाख जमीनें जमा हो तो एक सूरज बने, सुभान अल्लाह। और ये हमारा सूरज जो है ये तो कुछ भी नहीं है, इससे बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, 100 टाइम्स बड़े सितारे मौजूद हैं इस कायनात में, एक सितारा इतना बड़ा है कि वो हमारे सूरज जो है वो 9.3 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन सूरज हमारे जमा हो जाए तो वो एक सितारा बनता है, ओ सुभान अल्लाह। और वो हमसे 5,000 लाइट ईयर्स दूर है, यानी लाइट ईयर कितना होता है आपको पता है, सबसे तेज रफ्तार क्या चीज है दुनिया के अंदर, लाइट, ओके सबसे तेज रफ्तार, यानी 1 सेकंड के अंदर लाइट जो है ना हमारी जमीन के 8 चक्कर लगा ले, इतनी ज्यादा स्पीड है लाइट की। और ये लाइट ट्रेवल करे अपनी स्पीड पे कितनी तेज है ये सोचें, अब मैंने इससे ही आपको बताया, तो 5,000 लाइट ईयर्स लगेंगे इसको इस जमीन से वहां उस सितारे तक पहुंचने में, 5,000 लाइट ईयर्स, वो इतनी दूर है वो सितारा, तो अल्लाह की कायनात कितनी वसी है। मैं सिर्फ आपको बताना ये चाहती हूँ क्योंकि मुझे इसलिए ये बहुत सब्जेक्ट अपील करता है, इससे मुझे अल्लाह की पहचान आती है कि अल्लाह तू कितना बड़ा होगा, तेरी कुदरत कितनी है, और तू कितना इल्म वाला है, और तू कितना बुलंद है, जो इतनी कायनात को चला रहा है। फिर आप देखें टेम्परेचर कितना है हमारे सूरज का, सिर्फ उसकी सतह का टेम्परेचर 10,000 फ़ारेनहाइट है, और हम यहाँ पे के 100 डिग्री होता है ना, तो हम उसके ऊपर परेशान हो जाते हैं कि 100 डिग्रीज है आज टेम्परेचर जी, बहुत गर्मी है जी, बहुत गर्मी है। 10,000 डिग्रीज़ फ़ारेनहाइट उसकी सरफेस पे है, और उसके कोर में, सूरज के कोर में कितना टेम्परेचर है, 27 मिलियन फ़ारेनहाइट है। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर आपको पता है ये हमारी जमीन भी चल रही है, सितारे सैयारे सब चल रहे हैं। अब ये हम सोचते हैं हमारी जमीन ही घूम रही है सूरज के गिर्द, नहीं, सूरज भी घूम रहा है। सूरज अपनी गैलेक्सी में घूम रहा है, पता नहीं उसको उर्दू में क्या कहते हैं, गैलेक्सी को कायनात शायद कहते होंगे, तो उसमें उसके गिर्द भी चक्कर लगाता है सूरज जो है। सुभान अल्लाह, सूरज एक चक्कर पता है कितनी देर में लगाता है, मैं हैरान हूँ। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। 250 मिलियन ईयर्स उसको लगते हैं एक चक्कर लगाने में। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो छोटी सी बातें आपके सामने मैंने रखी हैं। हाँ जी, कहकशां, गैलेक्सी कहकशां कहते हैं उसको उर्दू में। तो सूरज अपनी कहकशां में, ये सिर्फ एक हमारी गैलेक्सी नहीं है, बेशुमार गैलेक्सीज हैं। ये कितनी बड़ी होगी कि सूरज इसके गिर्द इतनी स्पीड में चल रहा है, फिर भी इसको 250 मिलियन ईयर्स लगेंगे। अल्लाह अकबर। और जमीन की, जमीन के भेद, ये तो जमीन पे रहते हुए इंसान नहीं जान सका जमीन के भेद, जमीन के राज नहीं वो जान सका आज तक, कि क्या ऊपर से खुदाई करो तो पानी निकलता है, कोर है उसका तो उसके अंदर लावा है, ये क्या चीज है। आप जमीन के अंदर गौर व फिक्र शुरू कर दें, यहाँ के चरिंद परिंद पौधे, यहाँ के पहाड़, यहाँ के पानी, यहाँ के समंदर, इन चीजों पे गौर करना शुरू करें, तो आप सोचेंगे जिंदगी गुजर जाएगी। आप एक चीज के ऊपर पूरी रिसर्च नहीं कर सकते। अल्लाह ताला ने कहा इसमें निशानियां हो, तुम और क्या चाहते हो, तुम निशानियां मांगते हो। काफिर कहते थे कोई निशानी दिखाएं, मूसा अलैहि सलाम के मोजे इतने लेकर आए थे, ये लेकर आए थे, वो हाथ निकालते थे ऐसे होता था, वो करते थे, और ईसा अलैहि सलाम मुर्दों को जिंदा करते थे, कोढ़ी को अच्छा कर देते थे, अंधे को बीना कर देते, तो आपके पास क्या निशानी, आप हमें दिखाएं ना सफा पहाड़ को सोने का बना के दिखाएं हमें। अल्लाह ताला ने कहा तो निशानियां मांगते हो, बेवकूफ हो, ये कसमावाती वल अर्द के अंदर निशानी नहीं तुम्हें नजर आती, इस इख्तलाफ लैली वल नहार में निशानी नहीं नजर आती, तुम मोजे मांगते हो, ये मोजों से कम है। लेकिन चूंकि ये दिन और रात आते जाते रहते हैं, हमें क्या, ये को तो हमें लगते ही नहीं, ये रात और दिन रुक जाए ना, रात आए ये दिन ही दिन रहे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया ना, अगर अल्लाह तुम्हारे पर दिन ही कर दे सरमदा, तो कौन होगा जो तुम्हारे लिए रात लेकर आए, और अल्लाह तुम्हारे पर रात तारी कर दे, ले आओ अपने सारे 21st सेंचुरी के जो तुम्हारे पास चीजें हैं ना, जितनी टेक्नोलॉजियां, जितने तुम्हारे पास सैटेलाइट, जितनी पता नहीं क्या क्या तुमने कहा वह हमने बना लिया वह, तुम रात ला के दिखा दो, या दिन हो रात है तो दिन निकाल के दिखा दो, और तुम तो एक कोरोना का नहीं मुकाबला कर सके, तुम क्या दिन और रात की बातें करें। हम तो क्या, इंसान को तो अल्लाह ने ऐसा आजिज करके दिखा दिया ना, और अल्लाह अपनी निशानियां दिखाता रहता है इसी दुनिया में, दिखाता है इंसान, पहचान अल्लाह को, पहचान ले तो ये भी नहीं देख के पहचानता, ये सारा ये इल्म क्या है, ये एस्ट्रोनॉमी क्या है, ये रात दिन का आना जाना क्या है, ये जमीन के ऊपर जितनी निशानियां, कोई बायोलॉजी है, कोई जोलॉजी है, कोई केमिस्ट्री है, कोई फिजिक्स है, ये सब वही है ना, कोई मैथमेटिक्स है, ये सब वही है ना। तो ये उलूम जो होते हैं, ये उलूम काफिर या इस्लामी नहीं होते, पढ़ने वाला है जो अल्लाह की याद के साथ कोई इल्म पढ़ेगा तो वो इल्म मुसलमान इस्लामी इल्म हो गया, और कोई कुफर के साथ इसको पढ़ेगा तो काफिराना इल्म हो गया। तो इल्म नहीं काफरों वाला और इस्लामी होता, इल्म इल्म ही है, ये जो गौर व फिक्र इसमें करोगे तो ये तो इल्म है ना, ये तो साइंस पढ़नी है, तो ये तो खुद कुछ नहीं है। हाँ, आप किस नजर से पढ़ते हो, इसी इल्म को लेकर बाज लोग दहरी हो जाते हैं, नहीं अल्लाह को मानते, और इसी इल्म को लेकर इंसान अल्लाह को पहचान जाता है कि वो रब कौन है। और आप देखें जब इंसान गौर व फिक्र करता है ना, तो फिर वो देखता है कि वो इसके अंदर क्या उसको नजर आता है, इसके अंदर उसको ये नजर आता है अल्लाह तेरी कुदरत कितनी बड़ी है, अल्लाह तेरा इल्म कितना बड़ा है, अल्लाह तेरी तौहीद कामिल है, तू एक ही अकेला है, वरना तो ये चल ही नहीं सकता। यानी जब आप गौर फिक्र करते, कोई एक बात नहीं समझ आती, उसका ईमान बढ़ जाता है, उसको पता चलता है अल्लाह के पास कितनी हिकमत है, कितनी प्रिसीजन है, कितना वो हुसन को पसंद करता है, कैसी खूबसूरती उसने बनाई हुई, कितनी परफेक्शन बनाई हुई। यानी ये जो मखलूक है ना, अल्लाह का तारुफ है। इसीलिए अल्लाह में गौर फिक्र नहीं करना, मखलूक में करना है, खालिक में नहीं करना, तुम उसको नहीं पहचान सकते। हाँ, मखलूक में गौर फिक्र करो, तुम खालिक को पहचान जाओगे। ये सब साइंस हैं जो पॉइंट कर रहे हैं अल्लाह की तरफ, उसकी जात की तरफ, ये निशानियां हैं। और कितने ही लोग हैं जो इस जमीन के ऊपर चल रहे होते हैं और इन निशानियों को अपने पैरों तले रोंद रहे होते हैं और अल्लाह को नहीं पहचानते। कितने ही लोग हैं जो दिमाग रखते हैं लेकिन अल्लाह के बारे में नहीं उनको याद आती, कितनी आंखें हैं वो हर चीज देखती हैं, अल्लाह को नहीं पहचानती। तो चाहे जंगल देख लें, सहरा देख लें, समंदर देख लें, अनाज देख लें, मेवे देख लें, खुशबुएं देख लें, काने देख लें, जानदार देख लें, बेजान देख लें, अल्लाह की कुदरत की निशानियां ये आपको पॉइंट करेंगी अल्लाह की तरफ। दिन और रात का आना जाना, इनका बढ़ना कम होना, इनका कभी सर्द होना कभी गर्म होना, एक के बाद एक का आना, निशानियां हैं। कभी रात गम की है तो उसके बाद दिन रोशनी लेकर आ जाता है, चेंज आ जाती है। कभी रात खौफ की है तो दिन अमन वाला है, तो निशानियां इसके अंदर। लेकिन हर रात का दिन है और हर दिन के बाद भी रात आ जाया करती है, ये ना भूलना। बड़ी निशानी है, गौर फिक्र करें तो इंसान गौर नहीं करता ना। और ये याद रखिए, ये गौर फिक्र करना ये दिमाग की इबादत है। ये जरूरी नहीं आप बोल के कर रहे हैं, मैं सोचती हूँ आपके मैं आसमान कैसा, नहीं, ये कोई बोलने की जरूरत नहीं। तन्हाई में बैठें और गौर फिक्र करें, सोचें, सोच फिर आपको, और अल्लाह की याद के साथ सोचें, अल्लाह की याद के बगैर नहीं। इसी वजह से मैं आपको कहती हूँ, जो लोग मेडिकल साइंस पढ़ते हैं या जो और उलूम पढ़ते हैं, वो अल्लाह की याद के साथ उनको पढ़ें तो उनकी अकलें हैरान रह जाएं कि अल्लाह ने ये एक इंसान का जिस्म भी क्या चीज बना दी, क्या चीज है ये इंसान का जिस्म, वो हैरान रह जाएं। एक एक चीज, एक एक ऑर्गन का जो फंक्शन है ना, वो आपको अल्लाह तक पहुंचा देता है। अगर इंसान सब कुछ खाता भी है पीता भी है, आप हम औरतों को ही देख लें, कितने हम खाने बनाती हैं, सारे एक के बाद एक मसाला डाल रही होती है, एक के बाद एक मसाला, कभी नहीं गोश्त धोते हुए सोचा अल्लाह ये कहाँ से आया, ये किधर, ये जानवर जिबा हुआ होगा, किधर से ये पहुंचा यहाँ तक, कहाँ का ये जानवर होगा, कहाँ दुकान पे पहुंचा, कहाँ इतने सारे गोश्त में से मेरे लिए ये आया, अल्लाह तूने इसमें इतनी लज्जत रख दी, इतनी इसके अंदर। अब वो आपके उस वक्त के लोगों को तो शायद ना पता हो, अब तो हमें पता है इसमें इतनी कार्ब है, इसमें इतनी प्रोटीन है, इसके अंदर ये फवाइद है, इसके अंदर ये सब कुछ पता है कितनी, मगर फिर भी गौर फिक्र नहीं है, उससे अल्लाह तक नहीं पहुंचते क्योंकि उस नजर से देखते ही नहीं है। ये मैं एक एक नमक डाल रही हूँ, मिर्च डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, गरम मसाला डाल रही हूँ, जीरा, ये कि सब चीजें क्या है, ये स्पाइसेस अल्लाह तूने हमारे लिए पैदा कर दी कि हमारी लज्जत का सामान हो जाए। डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, कभी हंडी पक के आगे खाया भी पिया भी, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहने तक की भी नहीं तौफीक हुई, खा पी के उठे और कहा बहुत पेट भर गया, बड़ा मजा आया, मगर वो मजा किसने दिया, वो टेस्ट बड्स किसने रखे जुबान के ऊपर, वो हजम करने की तौफीक किसने दे दी, किसने दांतों को चलने के लिए हुक्म दे दिया, किसने आंखें दे दी कि देख सकते हो कि क्या खा रहे हो, किसने हाथों को ताकत दे दी कि निवाला बना रहे हो, तो कुछ कहीं पे भी नहीं रब याद आया। बाजार से चीज लाने से लेके पकाने से लेके खाने इसके बाद तक भी कभी रब नहीं याद आया। और फिर वो फुजला निकालते हो, अगर वो ना निकले तो वो भी एक बीमारी है, उसमें भी नहीं रब याद आता। उसकी भी दुआ है कि जब आप फारिग हो जाओ तो आप निकल के दुआ करो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अज़हबानी अलादा, अल्लाह तेरे, अल्लाह तेरा शुक्र है तूने ये तकलीफ मुझसे दूर कर दी। वरना आप कभी देखें कोई सफर पे जा रहे हो या कुछ है, बाथरूम ना मिले तो इंसान की हालत बुरी हो जाती है। वो कहता है कि हाय बाथरूम के लिए कोई रेस्ट एरिया आ जाए, मैं कहीं कड़ के बाथरूम चली जाऊं। तो कभी इंसान कितना लाचार हो जाता है, इंसान को तो वही बेबस कर देता है। लेकिन देखो इंसान सोचता नहीं, किसी चीज पे नहीं सोचता। कभी तो सोचो, कोई चीज तो तुम्हें अल्लाह की तरह मुतवज्जे करे। ये तो पूरी कायनात जो है ना, जितना कुछ हमारे इर्द गिर्द है और जो हमारी अपनी बॉडी है, ये सब में निशानियां हैं, सब में निशानियां हैं। मगर इंसान पहचाने, वो नजर लेकर आओ बस, वो सोच की आदत डालो तो हर एक चीज में आयत है। इब्ने कसीर ने ईसा अलैहि सलाम का एक कॉल नकल की है कि खुशनसीब है वो शख्स जिसका बोलना अल्लाह का जिक्र हो और नसीहत हो, और जिसका चुप रहना गौर व फिक्र हो, और इसका देखना इबरत हो और तनबीह हो। तो लुकमान हकीम का कॉल है कि तन्हाई की जो गोशा नशीनी है, यानी तन्हाई में इंसान जो रहता है, जिस कदर ज्यादा हो उसी कदर गौर व फिक्र और दूर अंदेशी की आदत ज्यादा होती है, और जिस कदर ये बढ़ जाए उस कदर रास्ते इंसान पर खुल जाते हैं जो उसे जन्नत में पहुंचा देंगे। यानी इंसान गौर व फिक्र करे, क्योंकि एक लम्हे का गौर व फिक्र, हसन बसरी फरमाते हैं, एक लम्हे का भी गौर व फिक्र रात भर के कयाम करने से अफजल है। कि आप एक लम्हा गौर व फिक्र तो करो, क्योंकि जब आप गौर व फिक्र करके कुछ कहोगे ना, तो फिर वो जो दिल से निकलेगा वो वैसे तस्बीह करने से नहीं आता। जो आप गौर व फिक्र करके सुबहान अल्लाह कहते हैं ना, वो वैसे नहीं सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह की तस्बीह करते हैं, वैसे नहीं होता, सेम नहीं है। इसीलिए हजरत मुगैस अस्वद मजलिस में बैठे हुए थे, फरमाते हैं लोगों कब्रिस्तान जाया करो, हर रोज जाया करो, ताकि तुम्हें अंजाम का ख्याल पैदा हो, फिर अपने दिल में इस मंजर को हाजिर किया करो कि तुम अल्लाह के सामने खड़े हो, फिर एक जमात को जहन्नुम में ले जाने का हुक्म दिया जा रहा है, एक जमात जन्नत में जा रही है, और अपने दिलों को उस हाल में हाजिर करो कि मैं वहां पे प्रेजेंट हूं, अपने बदन को वहां पे सोचो कि मैं वहां पे खड़ी हुई हूं, और जान लो कि जहन्नुम को अपने सामने तुम देख रहे हो, उसके हथौड़ों की, उसकी आग के, उसके कैद खानों को अपने सामने लेकर आओ। इतना फरमाते फिर धाड़े मार मार के रोने लगते, यहाँ तक बेहोश हो जाते। यानी वो कितना अपनी गौर व फिक्र कितना करते थे, कितनी इमेजिनेशन अपनी कहाँ तक लेके जाते थे। अब कहते हैं हम तो डर जाते हैं इससे, ना ना ना, ना ये नहीं बात करनी। क्यों नहीं? क्या ये हक नहीं है? क्या ये सच नहीं है? क्या ये देखना नहीं है? उस दिन जरूर देखोगे तुम, इस जहन्नुम के ऊपर से जरूर गुजरना पड़ेगा, ये जरूर लाई जाएगी हशर के मैदान। क्या देखना नहीं है जब नफसी नफसी की पुकारे होंगी? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर जो थे वो खंडरात में जाते थे, तो किसी टूटे फूटे दरवाजे पे खड़े होके हसरत अफसोस के साथ ना बड़ी दर्द भरी आवाज में फरमाते थे, ऐ उजड़े घरों वाले, उजड़े वे घरों, ऐ उजड़े वे घरों, तुम्हारे रहने वाले कहाँ चले गए? तो गौर व फिक्र सिर्फ ये नहीं होता, गौर व फिक्र ये अपने आप को इस दुनिया से डिटैच करने के लिए भी ऐसा गौर व फिक्र करना जरूरी है। डिटैच करें, अटैचमेंट हमारी टू मच है इस दुनिया के साथ, टू मच अटैचमेंट है। तो जब ऐसी जगहों पे जाते हैं ना, ओ घरों तुम्हारे रहने वाले कहाँ गए, फिर खुद फरमाते सारे जमीन के नीचे चले गए, सारे फना हो गए, सिर्फ अल्लाह की एक जात बाकी है। और ये जब कायनात में आप गौर फिक्र करते हैं तो फिर आप देखते हैं कि वो अल्लाह हमेशा से है और हमेशा तक के, देखो कितने आए और चले गए, अल्लाह वही है, वो चला रहा है ये सारा निजाम, और वो ना चलाए तो आज तो आपको साइंस इतनी इतनी कैलकुलेशन भी बताती है कि ग्रेविटी जो है वो इतनी अगर ज्यादा होती तो हमारा क्या हाल होता, और अर्थ में ग्रेविटी इतनी कम होती तो हम उड़ते फिरते, अगर सूरज जिस फोर्स से पुल कर रहा है इस अर्थ को, अगर वो थोड़ी ज्यादा होती तो ये जमीन जाकर उसके अंदर गिर जाती, और अगर कम होती तो जमीन कहीं और ही रवाना हो जाती। ये जो अपने मदार में घूम रही है, अपने ऑर्बिट में, इसकी वजह है कितनी प्रिसिजन है उसमें, एक एक डेसिमल के आगे तक भी जो नंबर है वो इतना प्रिसाइज्ड है, इतना कैलकुलेटेड है, वो किसी ने ही कैलकुलेट किया होगा ना, किसने बनाया, कोई तो जात होगी ना। एक तो जब कोई देखेगा इनमें गौर और फिक्र करेगा, वो एथिस्ट कैसे रह सकता है, कैसे कह सकता है कोई भी नहीं है ये सारा बनाने वाला चलाने वाला। वो फिजिक्स पढ़े, तुम केमिस्ट्री पढ़े, तुम बायोलॉजी पढ़े, तुम्हें नजर नहीं आता किसने ये लॉज बनाए, किसने ये केमिकल्स में ये तासीरें बनाई, ये फॉर्मूले आज आप याद कर करके रट रट के परेशान हो जाते हैं, केमिस्ट्री के इक्वेशंस हल करनी मुश्किल हो जाती है। किसने ये इल्म कहाँ से आया, कोई खबीर है ना या नहीं? अल्लाह अकबर। वो फिर भी ना इंसान अल्लाह को पहचाने, तो उसमें और जानवर में कोई फर्क नहीं है, जानवर के पास भी दिमाग होता है, वो भी दिमाग लेके फिर रहे हैं, ऐसा नहीं कि उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास भी बकरी का आप मगज खाते हैं ना, है भी उसके पास भी दिमाग है, ये तो उसके दिमाग में और हमारे दिमाग में अगर वो फर्क ही नहीं है, तो फिर हमारे में और उस गाय बकरी में क्या फर्क है, अगर हमने इस दिमाग से सोचना ही नहीं है कभी कुछ, और इस दिमाग से हमने उसी को ना पहचाना जिसने हमें ये सब कुछ दिया और इस कायनात को सजा दिया, हमारे लिए डेकोरेट किया हुआ है, हर तरफ डेकोरेशंस है। आप अपने घर को सजाते संवारते और उसके ऊपर फूले नहीं समाते, और आप कायनात को तो देखो हर तरफ डेकोरेशन, वो ये नजर तो लेकर आओ देखने की। तो अगर इस दिमाग ने यही ना सोचा, आपने हर चीज में सोच विचार कर दी मगर उस तक ऐसे अल्लाह तक ही ना पहुंचे। अगर कपड़ों का भी आपको शौक है तो सोचो ये रंग किसने बनाए, ये तो ये रंग भी लेकर आते हैं, ये जो जंगलों वगैरह के अंदर वो जो जो कलर्स होते हैं उनसे कॉपी करते हैं ये, और इन रंगों को देखने की इस आंख के अंदर ये ताकत किसने रखनी है। कई लोग कलर ब्लाइंड होते हैं। ये मौजू इतना लंबा है, मेरे ख्याल में मैं इसमें लंबे ना जाऊं क्योंकि फिर मैं सारी क्लासेस में ही मेरी चली जाएगी और मैं नहीं आपको आगे पढ़ा सकूंगी, तो ये तो वो मौजू है कि बस छिड़ जाए तो फिर तो इस कपड़ों के शौकीनों इस तरह से भी देखा करो, जेवरों के शौकीनों इस तरह भी देखा करो कि ये सोने की कानी होंगी, वहां पे किसने ये सोना पैदा किया, कहाँ से ये निकला, कहाँ तक अल्लाह ने इसको पहुंचाया, ये डिजाइनिंग करने वाले अपने डिजाइन कहाँ से लाते हैं, कभी सोचा है आपने? ये कायनात से देख के लाते हैं। तो ईसा अलैहि सलाम का एक और कॉल है कि इब्ने आदम है जईफ इंसान, जहां कहीं तू वो अल्लाह से डरता रहे, दुनिया में आजी और मिस्कीनी के साथ रहे, अकड़ के मत रहो, अपना घर मस्जिदों को बना लो, यानी मस्जिदों में बहुत आया जाया करो, अपनी आंखों को रोना सिखा लो, हंसने वाले आज बहुत हैं, अपनी आंखों को अल्लाह के लिए रुलाने वाले बहुत कम है, अपने जिस्म को सबर की आदत सिखाओ, ये नहीं कि जरा सरा सी बात के ऊपर वावेला खड़ा कर देना, अपने दिल को गौर व फिक्र करने वाला बनाओ, ये सोचा करें इन चीजों पे, हमारे तो सोचें और कोई खत्म होंगी तो फिर हम ये सोचेंगे ना, हमें तो ये सोचे हैं कि कल का खाना कहाँ से आएगा, मेरी जॉब का क्या बनेगा, बच्चों के फ्यूचर का क्या होगा, वो पढ़ रहा है कि नहीं, वो ऐसे करना है कि नहीं, उसकी शादी का क्या होगा, ये या उस पार्टी में जाना है क्या पहन के जाऊंगी, ये सोचे हैं, उन्होंने बड़े घर बना लिए, हमारा तो घर छोटा ही रह गया, ये हमारी सोचे हैं, तो गौर फिक्र के कब करेंगे, सोचें ये पीछा छोड़ेंगी तो हम कभी गौर फिक्र करेंगे ना, तो अपने दिल को गौर फिक्र करने वाला बनाओ, कल की रोजी की फिक्र आज ना करो, ये उन्होंने फरमाया। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज एक दफा मजलिस में बैठे हुए थे, रो दिए, लोगों ने पूछा आप क्यों रोते हैं, फरमाया मैंने दुनिया में और इसकी लज्जतों में और इसकी ख्वाहिशात में गौर व फिक्र किया, मुझे बड़ी इबरत आई, और मैं जब नतीजे पे पहुंचा ना, नतीजा क्या है सब चीज का, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, तो कहते हैं मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई, उमंगे खत्म हो गई। अल्लाह अकबर। अब ये जो गौर व फिक्र करने वाले बड़े अकल वाले लोग हैं ना, ये कौन से लोग हैं, इनकी क्या क्वालिटीज हैं, आगे ये बताया गया, अल्लदीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामं वक़ऊदं वअला जुनूबिहिम, वो अल्लाह को याद करते हैं खड़े बैठे लेटे, इसका एक मतलब तो ये है कि यानी नमाज पढ़ते हैं और नमाज में अगर खड़े ना पढ़ सके तो बैठ के, बैठे ना पढ़ सके तो लेट के पढ़ते हैं, एक तो इसका ये मतलब है, ठीक है। दूसरा इसका मतलब ये है कि यानी आप देखें इंसान इन तीन ही पोजीशंस में कभी हो सकता है ना, या तो खड़ा होगा या बैठा होगा या लेटा होगा, यानी वो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते रहते हैं, हर वक्त। वो है ना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर वक्त अल्लाह का जिक्र किया करते थे, और फरमाया कि अल्लाह को इतना याद करो कि लोग तुम्हें मजनून कहने लगेंगे, दीवाना है ये। तो वो हर वक्त अल्लाह की याद में रहते हैं, अल्लाह ही की याद उनको महबूब रहती है। ये वो लोग हैं, जाहिर है जब गौर व फिक्र करेंगे इतना तो फिर अल्लाह याद तो रहेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इब्ने आदम का कोई कलाम उसके लिए मुफीद नहीं है सिवाय नेकी का हुक्म देना, बुराई से रोकना और अल्लाह का जिक्र, ये है जो फायदेमंद है। और फिर फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज की खबर ना दूं जो तुम्हारी सबसे बेहतर अमल हो, जो तुम्हारा तुम्हारे मालिक के नजदीक सबसे पाकीजा, तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा दर्जे बुलंद करने का बायस हो, और तुम्हारे लिए सोने और चांदी खैरात करने से भी अफजल हो, और जब कल तुम्हारा दुश्मन से मुकाबला तो उनकी गर्दनें मारो या वो तुम्हारी गर्दनें मारे, इससे भी बढ़ के ये अमल है। तो सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल क्यों नहीं? आपने फरमाया अल्लाह का जिक्र। और हजरत मुआज ने कहा अल्लाह के जिक्र से ज्यादा कोई चीज अल्लाह के अजाब से निजात देने वाली नहीं है, सबसे ज्यादा अल्लाह का जिक्र जो है ना वो उसके अजाब से निजात देता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो लोग किसी मजलिस में बैठे और अल्लाह का जिक्र ना करें वो मजलिस उनके लिए हसरत बन जाएगी। तो आप जहां पे भी जाते हैं लाजिम है आपके ऊपर कि वहां पे आप अल्लाह का जिक्र करें। अगर आप खाना खा रहे हैं बिस्मिल्लाह कह के खा लें, किसी से बात कर रहे हैं अल्लाह की कोई बात कर लें, अल्हम्दुलिल्लाह कह के उठें, मजलिस से उठ रहे हैं तो उसके कफारे की दुआ कर लें, सब अल्लाह के जिक्र हैं। लेकिन जरूरी है कि आप अल्लाह का जिक्र करें वहां। तो उठते बैठते लेटे हर हाल में कोई पोजीशन उनको अल्लाह नहीं भुलाती, लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र करते हैं। हम तो सोचते हैं लेटी नहीं हूं तो फिर मैं कैसे अल्लाह का जिक्र करूं। अल्लाह का जिक्र सिर्फ ये नहीं कि आपने बोल के करना, अल्लाह की याद अल्लाह का जिक्र। मैंने आपको बताया ना दिमाग जो सोचता है ना वो अल्लाह ताला की मखलूक पे गौर व फिक्र कर रहा है अल्लाह को पहचानने के लिए, तो वो दिमाग की इबादत है, दिमाग भी इबादत करता है। जुबान से आप बोलते हैं ये जुबान की इबादत है, जुबान से अल्लाह को याद करना है। तो ये कि भाई मेरे सर पे तो दुपट्टा नहीं है, अब मैं लेटी नहीं हूं तो मैं क्या करूं, तो फिर अभी उठूंगी तो फिर अल्लाह का कोई जिक्र करूंगी, नहीं आप लेटे हुए भी अल्लाह का जिक्र करें, अल्लाह को याद करें। व यतफक्करून फी खल्क السماوات والارض, और देखें फिर ये बात आ गई कि वो गौर व फिक्र करते हैं आसमानों में और जमीन की पैदाइश में गौर व फिक्र करते हैं। जब वो गौर व फिक्र करते हैं ना तो फिर क्या इसका नतीजा निकलता है, पता है क्या नतीजा निकलता है? वो फिर उनकी जुबान से बेख्तियार निकल पड़ता है क्या, रब्बना मा खलकता हाज़ा बातिला, ए हमारे रब तूने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की, यानी बातिल मतलब कोई चीज बेमकसद पैदा नहीं की है या अल्लाह, हर चीज का मकसद है। इवन ये नाखून आपकी उंगली के ऊपर लगा हुआ ना इसका भी कोई मकसद है, इवन ये छोटी उंगली है इसका भी एक मकसद है। नहीं है चीज कोई, नहीं है चीज निकम्मी कोई जमाने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में कि हर चीज का एक मकसद है। अल्लाह तूने सब चीजों को कोई किसी पर्पस से बनाए, बेफायदा नहीं ऐसे ही बना दिया, चाहे हमें लग रहा हो कि इसका क्या फायदा हो सकता है, इसको तो होना ही नहीं चाहिए था, नहीं अबस अल्लाह का काम कोई अबस नहीं। अल्लाह ने कोई चीज ऐसी खेल तमाशे के, जैसे वो मुशरिकीन की ये एक, हिंदुओं की एक है कि ये राम की लीला है, राम ने खेल के तौर पे ये सारी बनाई, तो ऐसा नहीं है। हम कहते हैं अल्लाह ने कोई चीज बेफायदा नहीं बनाई, हर चीज छोटी से छोटी भी है ना बेकार नहीं है। सुबहाना का फिर वो आगे क्या कहते हैं, अच्छा अब आप आगे पढ़ेंगे कि जब वो ये गौर फिक्र करते हैं ना तो उनकी बातें क्या हैं, ये सारी आप उनकी कन्वर्सेशन आप देखेंगे ऐसी है। फिर आगे कहते हैं सुबहाना का, अल्लाह तो पाक है। सुबहान का मतलब क्या होता है? जो हर ऐब से, हर कमी से, हर खराबी से, हर वीकनेस से, हर फ्लॉ से, हर कमजोरी से पाक हो। इसीलिए सुबहान नाम रखना उलमाए से मना करते हैं कि ये नाम ना रखा जाए, क्योंकि ये सिर्फ अल्लाह ताला के लिए, सुबहान सिर्फ अल्लाह है, इसलिए हम सुबहान अल्लाह कहते हैं बस, सुबहान मोहम्मद भी नहीं कहते, ठीक है? क्योंकि हर ऐब से पाक और कोई जात नहीं हो सकती। तो सुबहान अल्लाह के वो आगे क्या उठते हैं, सुबहान का, सुबहान का क्या है, सुबहान अल्लाह ही है ये, ठीक है? तू पाक है क्योंकि अल्लाह से डायरेक्ट उसको पुकार रहे हैं ना, तो वो सुबहाना का कहते हैं ला तू पाक है, वाकई तूने कोई चीज बातिल नहीं पैदा की। फकीना आदा बन्नार, ए अल्लाह हमें आग के अजाब से बचा ले, ये अब उन्होंने क्यों कहा? अब ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि ये आप और वो क्यों आग के अजाब के ऊपर क्यों पहुंच गए? अभी तो वो बातें कर रहे हैं कि अल्लाह तूने कोई चीज बातिल पैदा नहीं की, कोई चीज बेमकसद, हम तो बस इतना कह लेते ना सुबहान अल्लाह बस ठीक है देखे उसके बाद चलो अपने कामों में, लेकिन उनकी कहाँ तक सोच जा रही है, कहाँ तक सोच जा रही है इस पे आप हैरान होंगे कि वो क्यों कहते हैं फाके ना अदा बन्नार, ये मेरे आपसे क्वेश्चन है, वो क्यों कहते हैं आग पे क्यों वो पहुंच गए, आग का अजाब उनको कैसे याद आ गया, कायनात में तो गौर फिक्र कर रहे थे, किसी के पास जवाब है इसका? उसके लिए नाम है जिसकी जिस जो जवाब देगा। ठीक है पहले मैं आपको अगली आयत बताती हूँ फिर उसके बाद इसका जवाब दूंगी, आप इतनी देर सोचे। रब्बना ए हमारे रब, इन्नका बेशक, मन तुदखिलिन नारा फकद अखजैता, जिसको तूने आग में दाखिल कर दिया ना तो तूने तो उसको रुसवा कर दिया। अल्लाह इससे बड़ी क्या रुसवाई होगी कि कोई आग में एंटर हो जाए। अब इससे उलमा कहते हैं कि आग में एंट्री चाहे थोड़ी देर की भी हो, ये नहीं कहना चाहिए कोई बात नहीं थोड़ी देर के लिए आग में चले भी गए तो उसके बाद ठीक है, नहीं चाहे थोड़ी देर के लिए भी आग में जाना पड़े तो वो एक रुसवाई तो है ना, एक रुसवाई तो है ना, जब लोग गिर गिर के पड़ेंगे पुल सिरात से या खेच खेच के उनको जिल्लत के साथ ले जाके आग में फेंका जाएगा तो वो कितनी बड़ी रुसवाई है। तो वो अब कह रहे हैं अल्लाह जिसको तूने आग में डाल दी तू हमें आग के अजाब से बचा लेना, क्योंकि जिसको तूने आग में डाल दिया वो तो रुसवा हो गया, वो तो, और हमें देखो दुनिया की रुसवाई का बड़ा डर होता है कि दुनिया के अंदर हमें हाय मैं रुसवा ना हो जाऊं, हाय मैं बेइज्जत ना हो जाऊं, हाय ये ना हो, नहीं ये कपड़े पहन लिए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरे पास ये वाली गाड़ी हुई तो हमारी क्या इज्जत रहेगी, हमारा ये इतना छोटा सा घर देख के क्या हमारी इज्जत रह गई है, नहीं उनको ये नहीं परवाह, उनको देखो वो ये नहीं कह रहे कि यहाँ की नहीं बात कर रहे, वो कह रहे आग के अजाब में जिसको तूने डाल दिया वो रुसवा हो गया, क्योंकि आग का अजाब वाकई रुसवाकुन है, वो कुछ नहीं छोड़ता इंसान का, इंसान के लिए उसकी आप देखें उसमें है ना सूरह मुदस्सिर में, वमा अदरा का मा सकर ला तुबकी वला तदर लवाहतुल लिल बशर, तुम्हें क्या पता जहन्नुम है क्या सकर है क्या, ना बाकी रहने देगी ना छोड़ेगी वो ना, सुम्मा ला यमूतु फीहा वला यहया, ना जिंदा हो गया तो ना मुर्दा हो गया, लवाहतुल लिल बशर इंसान को झुलसा देने वाली है। अल्लाह अकबर अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। तो ऐ अल्लाह दुनिया की रुसवाई तो क्या रुसवाई है, अल्लाह हमें आखरत की रुसवाई से बचा ले, ये मुंह के बल घसीट के ले जाया जाएगा वहां पर। और आप देखें लोग छुपाते हैं तो अपने काम यहाँ पे छुपाते हैं कि यहाँ पे लोगों को ना पता चल जाए रुसवा हो जाऊंगी, यहाँ पे ना लोगों को मेरी बात ये मेरा गुनाह पता ना चल जाए कि हाय अगर उसको पता चल गया कि मैं ये करती हूँ तो कितनी मेरी रुसवाई है। हालांकि सबसे बड़ी फिक्र ये होनी चाहिए कि ए अल्लाह जब मखलूक खड़ी होगी और उनके सामने मैं एक्सपोज हो जाऊंगी और मेरे गुनाह आ जाएंगे तो या अल्लाह उस वक्त कितनी बड़ी रुसवाई है, ये डर होना चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे कितनों को पता चल जाए, 10 को 20 को, है ना, मगर जो आखरत की रुसवाई है वो तो हमेशा की है, और अगर थोड़ी देर भी उसमें चले गए तब भी कितनी रुसवाई। आप देखें यहाँ पे लोग कोई जेल के अंदर चला जाए चाहे 4 दिन रह के आ जाए, उम्र कैद नहीं है, चाहे साल भर रह के आ जाए, एक रुसवाई तो है ना, सारी जिंदगी के लिए धब्बा तो लग जाता है। तो ये वो ये कह रहे हैं वो, और कहते हैं वमा लिज़ालिमीना मिन अंसार, अल्लाह जालिमों का कोई मददगार नहीं, वहां पे कौन मदद करेगा, कोई ना खुद को खुद निकाल सकेगा ना कोई उसको आगे निकाल सकेगा। तो ये अब इसका जवाब कि वो कायनात में गौर फिक्र करके उसके बाद कहते हैं रब्बना मा खलकता हादा बातिला, फिर कह रहे हैं फकीना आजाबन्ना, ये क्यों कह रहे हैं? इसका जवाब ये है कि जब वो कायनात में गौर व फिक्र करते हैं ना तो वो देखते हैं कोई चीज बातिल नहीं है, कोई चीज बेमकसद नहीं है, तो अल्लाह हमारा भी तो कोई मकसद होगा फिर, है ना, मेरा भी तो कोई मकसद होगा, और अगर मैंने अपना मकसद ना पूरा किया तो इसका नतीजा क्या बन भुगतना पड़ेगा फिर, इसका नतीजा क्या होगा फिर, ये नतीजा तो जरूर इस जिंदगी के बाद ही होगा ना, यानी अभी किसी रसूल ने आके कुछ नहीं बताया, सिर्फ गौर और फिक्र करने से भी इंसान अल्लाह तक पहुंच सकता है। कि वो फिर कहते हैं कि इसका कोई नतीजा होगा अगर मैंने अपना मकसद पूरा ना किया, अगर मैं फेल हो गई तो फिर तो कोई सजा मिलेगी क्योंकि मकसद नहीं पूरा किया। देखिए तफक्कुर ने कहां तक पहुंचा दिया। तो कहते हैं फकीना अजाब नार, अल्लाह के अजाब से बचा ले, अल्लाह सजा से बचा लेना। हर चीज अपना मकसद पूरा कर रही है, मेरा भी तो एक मकसद है। कोई चीज तूने बेमकसद नहीं पैदा की, हर चीज चाहे सूरज, चांद, दरख्त, समंदर, पहाड़, जानदार या बेजान, सब अपने मकसद को पूरा करने में लगे। अगर मैंने अपना मकसद ना पूरा किया तो क्या होगा, वो कांप जाते हैं, तो वो फिर आग के अजाब से पनाह मांगते कि अल्लाह हमें बचा लेना। फिर कहते हैं रब्बना इन्ना ना समयना मुनादी युनादी लिल ईमान, ए हमारे रब बेशक हमने सुना एक मुनादी को निदा देते हैं। मुनादी कौन? कुरान भी मुनादी है, पुकारने वाला, ऐलान करने वाला है ईमान के लिए, ऐलान करता है ना कि आओ ईमान ले आओ, आओ ईमान ले आओ, अन आमिनू बि रब्बिकुम, ईमान ले आओ अपने रब पे। और दूसरा मुनादी कौन है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी मुनादी है क्योंकि उन्होंने भी बुलाया लोगों को अल्लाह की तरफ। और तीसरा मुनादी कौन? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कयामत तक आने वाले कोई आलिम, कोई वाइज जो अल्लाह के दीन की तरफ बुलाए, वो भी मुनादी है। जो भी कहता है आमीनू बे रब्बिकुम, लोगों को बुला रहा है, लोगों आओ अल्लाह के दीन की तरफ, लोगों आओ अल्लाह की तरफ, हमने उसकी बात सुनी। कुछ लोगों ने तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डायरेक्टली सुना, अपने कानों से सुना, सहाबा कराम थे वो। और कुछ बाद में आने वाले, उन्होंने उलमा के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुना, अल्लाह की बात को सुना, कुरान भी मुनादी है। तो जो ये सारे कह रहे हैं ना अन आमीनू बि रब्बिकुम, तो जो भी मुनादी को, किसी भी मुनादी को आपने सुना जो कह रहा है आमन आमीनू बि रब्बिकुम, तो उसका जवाब हमने दिया फआमन्ना, तो हम ईमान ले, हमने उसकी बात मान ली। अल्लाह हमने कुछ आगे से कोई पसो पेश नहीं की, अल्लाह हमने और कुछ नहीं कहा, हम ईमान ले आए। और रब्बाना, ए हमारे रब, हम ईमान ले आए ना, अब फगफिर लाना, तो अब तू हमें माफ कर दे। यानी वो अपने, देखें ये भी सही होता है, जैसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने नेक कामों का अल्लाह को वास्ता दे सकते हैं। अल्लाह अगर तुझे मेरा ये नेक ये काम पसंद आया, वो गार वालों वाली हदीस याद करे, वो जो गार में फंस गए थे और फिर उन्होंने अपने अपने नेक कामों का वास्ता दिया था, अल्लाह अगर तुझे मेरा ये नेक काम पसंद है तो ए अल्लाह तू हमें यहाँ से निकाल दे। ठीक है, तो इसी तरह इंसान अपने ईमान का भी वास्ता दे सकता है कि ए अल्लाह हम तेरे ऊपर ईमान लेकर आए हैं, अल्लाह तो इस ईमान के वास्ते हमारी बख्शिश कर ले। तो वो कहते हैं, वो ये बात कह रहे हैं, इसका मतलब आप जब, यानी जब ये पढ़ते हैं ये आयतें, तो आप भी सोचें कि आपके पास भी निदा देने वाला निदा दे रहा था और आपने उसकी बात मान ली। अब आप कहते हैं और रब्बना फ़ाग़फ़िर लना ज़ुनूबना, अल्लाह बख्श दे हमारे हमारे लिए हमारे गुनाहों को, वकफ़िरन्ना सय्यातिना, अल्लाह दूर कर दे हमारी ये अगली, मैंने आपको बताया सू क्या होता है, अगली चीज, ये अल्लाह ये गंदगी, ये बुराई हमसे दूर कर दे, जो हमें चिपकी हुई है बुराई, जो गुनाह चिपक गए हैं हमसे, अल्लाह इनको दूर कर दे। हमारी वैसे भी जो बुराइयां, अल्लाह इनको हमसे दूर दूर कर दे कि हमें नजर भी ना आए ये बुराई। इंसान बाज दफा बुराइयों को छोड़ना चाहता है लेकिन उसमें वो अल्लाह की मदद चाहता है कि अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे से खुद नहीं छूट रही, तो अल्लाह दूर कर दे मुझसे मेरी बुराइयां, व तवफ्फना मा अल अबरार, अल्लाह फौत कर दे हमें नेक लोगों के साथ। अच्छा, अब पहली बात फ़ग़फ़िर लना ज़ुनूबना, ये ऐसा नहीं है कि एक दफा कहने की बात हो कि हमने दिन में एक दफा तौबा इस्तग़फ़ार कर लिया तो अब क्या जरूरत है करने की, नहीं, ये उनका बार बार की उनकी ये दुआ होती है। आपको पता है नबी अलैहिस्सलाम जो हर एक गुनाह से पाक थे, मासूम अनिल खता थे, 70 से 100 मरतबा दिन में तौबा इस्तग़फ़ार किया करते थे। मैं आपसे और मैं अपने आप से अगर सवाल करूं कि क्या हम इतनी तौबा इस्तग़फ़ार करते हैं, तो मुझे तो ये जवाब मिलता कि नहीं, शायद आपका भी यही हो कि हम नहीं इतनी दफा तौबा इस्तग़फ़ार करते दिल से, जो हमने जैसे करनी चाहिए, हमें जितने हमारे गुनाह हैं हम नहीं करते उस तरह। लेकिन आप अलैहि सलातो वसलाम इतनी तौबा इस्तगफार किया करते थे। तो जब इंसान ये पढ़ता है ना कि नेक लोग कैसे अल्लाह के हजूर तौबा करते थे, तो फिर अपनी तौबा इस्तगफार को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि नेक लोगों की आप जहां पे भी सिफात पढ़ेंगे वो तौबा बहुत करते हैं। और हदीस में आता है जो चाहता है कियामत के दिन उसका अमालनामा उसको खुश कर दे, वो तौबा इस्तगफार बहुत किया कर। इसको एक अपना तरीका बनाना चाहिए। मसलन हर वक्त हम अपना मसलन तकिया कलाम बना लें, चलो हर वक्त हम सोच के नहीं भी कर सकते, तो रब्बे गफिर वरहम, रब्बे गफिर वरहम, सूरह मोमिनून में है ना ये, रब्बे गफिर वरहम, इतना आसान बात है ना, अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह रहम कर दे, अल्लाह माफ कर दे। कौन सी पता नहीं कौन सी घड़ी कबूलियत की हो जब हमारी माफी हो जाए, हम भी अल्लाह रहम कर दे ना, हो सकता है ना। एक बड़ी प्यारी मैंने तहरीर पढ़ी थी आपके साथ शेयर करती हूँ, कहते हैं एक हेडमास्टर के बारे में एक वाक्या मशहूर हुआ कि वो किसी स्कूल में जब उनको लगाया गया तो उन्होंने अपनी क्लास का टेस्ट लिया। टेस्ट के एंड पे उन्होंने सबकी कॉपियां चेक की और हर बच्चे को अपनी अपनी कॉपी अपने हाथ में पकड़कर एक कतार में खड़ा हो जाने को कहा, और उन्होंने ऐलान किया कि जिसकी जितनी गलतियां होंगी ना उसके हाथ पे उतनी छड़ियां मारी जाएंगी, उतने रूलर मारे जाएंगे। हालांकि वो नरम दिल थे, बड़ी आहिस्तगी से बच्चों को मार रहे थे, सजा दे रहे थे, ताकि सिर्फ नसीहत हो उनको मगर सजा का खौफ रहे, बच्चे अगली दफा तैयारी करें। तो सारे बच्चे खड़े हुए थे, साहब हेडमास्टर साहब बच्चों से ना उनकी गलतियों पूछते थे, आपकी कितनी गलतियां हैं, फिर उसके मुताबिक उनके हाथों पे छड़ियां मारते थे। एक बच्चा ना बड़ा घबराया हुआ था, जब वो उसके करीब पहुंचे और उससे उसकी गलतियों के बारे में पूछा तो खौफ इतना था कि उसके हाथ से उसकी कॉपी गिर गई, और वो कहने लगा, बहुत मुझे हमेशा ये बड़ी इमोशनल लगती है, कहने लगा मुझे माफ कर दे, मेरा सारा कुछ ही गलत है। तो वो हेडमास्टर जो थे वो इस जुमले की ताब नहीं ला सके, उनकी अलग से जोर से चीख निकली, हाथ से चढ़ी गिर गई, वो जारो कतार रोने लगे और बार बार कहने लगे, अल्लाह अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा तो सब कुछ ही गलत। तो रोते रोते उनकी हिचकी बंद गई, कहते जा रहे थे तुमने ये क्या कह दिया, अल्लाह मुझे माफ कर दे, मेरा तो सब कुछ ही गलत है, तुम्हारा तो सब कुछ ही गलत है, सिर्फ अल्लाह की रहमत ही है कि हमारी बख्शिश हो सकती। तो वो ये दुआएं करते हैं, फग़फिर लना ज़ुनूबना, देखिए फिर गौर व फिक्र कहाँ तक पहुंचा देता है कि इंसान जब पहचानता है ना कि वो रब कितना बड़ा है और मैं क्या चीज हूं, और मैंने कितनी उसके हक में कमियां की, मैंने कितनी कोताहियां की, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसा, मुझे तो एक लम्हे भी ऐसे रब की जो सुभान है उसकी एक लम्हे के लिए भी मुझे नाफरमानी नहीं करनी चाहिए थी, ये मैं क्या कर बैठी। तब वो अपने गुनाहों के बोझ को लेके अल्लाह के आगे खड़ा हो जाता है, फिर वो रोता है कि अल्लाह मुझे माफ कर दे, मैं क्या कर बैठा, अल्लाह मेरा खात्मा भी अबरार के साथ करना, नेकों के साथ करना है अल्लाह। क्योंकि इंसान जो इंसान दुनिया में नेक लोगों के साथ रहता है वो नेकों के साथ ही मरना चाहता है, और वाकई इंसान खुद चाहे कितना ही गुनाहगार हो, पता है जब वो नेकों की सोबत में रहता है तो उससे बड़ा फायदा होता है उसको। कैसे, वो कहते हैं ना कि जो आपने देखा होगा कि ये चावलों में गंदों में कंकर भी होते हैं, मगर वो कंकर चूंकि वो चावलों के अंदर होता है, वो चावल के भाव ही बिकता है, चावल के साथ ही पैक होता है, चावल के साथ ही कंधों पे उठा के ले जाया जाता है। अगर वो कंकर चावल में ना हो और उससे अलग हो तो पैरों में कहीं रुल रहा हो, लेकिन वो उस कीमती चीज के साथ होता है ना तो उसकी भी कीमत उसके मुताबिक ही लग जाती। तो नेक नहीं भी है, नेकों की सोबतें अपनाए, नेकों के साथ उठे बैठे, नेकों का साथ चाहे। देखो सुभान अल्लाह, यूसुफ अलैहि सलाम की दुआ है वो, अलहिकनी बिसालहीन, अल्लाह मुझे सालहीन का साथ अता फरमाना, उनके साथ मिला देना। तो दुनिया में भी ये ख्वाहिश होनी चाहिए। देखिए अगर दुनिया में नेक लोग पसंद नहीं है और उनके बुरे लगते हैं और उनके कई ऐब, ये क्या, ये तो पता नहीं कौन सी सेंचुरी के लोग हैं, ये तो पता नहीं क्या बैकवर्ड है, ये तो पता नहीं क्या है, उनसे वो लोग अच्छे लगते हैं जो कि बस मादर पिदर आजाद है, और जो आज के दौर में जो मॉड स्क्वाड कहलाते हैं, जिन्होंने अल्लाह के हर हुक्मों को तोड़ के अपनी मनमानियां की हुई है, अगर वो महबूब है आज, तो जाहिर है जो जिससे मोहब्बत रखता है उसी के साथ वो कयामत के दिन होगा। और अगर किसी को सालेहीन का साथ पसंद है तो जाहिर है वो इस दुनिया में भी कोशिश करेगा कि इनके साथ रहे और आखरत में भी, और चाहेगा कि अल्लाह उनके साथ ही मुझे रखना। आपको पता है मूसा अलैहि सलाम, मूसा अलैहि सलाम अल्लाह के पैगंबर हैं, लेकिन उन्होंने जब दुआ किया, आपको पता है जब उनकी मौत का वक्त आया, उन्होंने कहा था ए मेरे रब, मुझे बैतुल मकदस से इतनी दूर बस कर दे, यानी इतनी करीब कर दे जितना एक पत्थर फेंका जाता है ना, जितना उतना फासला होता है, क्योंकि मैं वहां पे नहीं भी पहुंच सकता तो अल्लाह मुझे उस जगह के करीब कर दे। और उलमा कहते हैं, इब्ने हजर ने लिखा है, क्योंकि वहां पे अंबिया मदफून है, वहां पे औलिया शुहदा, वहां पे उनकी कब्रें, तो उनका जवार चाहते थे, उनका कुर्ब चाहते थे। हजरत उमर भी देखें, उनकी ख्वाहिश क्या थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब दफनाए जाए। तो जो सालेहीन के साथ दुनिया में मोहब्बत रखते हैं, अब्रार के साथ मोहब्बत रखते हैं, वो चाहते हैं कि फौत भी उनके पास ही, उनके साथ ही हो और उनके करीब ही दफन हो और कयामत में भी उनके साथ ही हो। तो लेकिन जो इंसान की जैसी जिंदगी होती है वैसी उसकी मौत होती है, तो अगर चाहते हैं कि मौत भी अच्छे लोगों के साथ ही हो तो उन्हीं के साथ रहना चाहिए जो नेक है, जो अल्लाह की बंदगी का हक अदा करने वाले।